नमस्कार, दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। विधानसभा सचिवालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सभी विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नगर निगम के 500 छात्रों को 1000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने देश और विदेशों में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए समझौता किया। पुलिस ने ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली सरकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर कल से भीम ज्योति उत्सव का आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के लिए निर्धारित समय सीमा तय करते हुए सभी संबंधित विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर किए गए ऑडिट की पहली रिपोर्ट पर आधारित है। एक रिपोर्ट।
इसके अंतर्गत सभी विभागों को 31 जुलाई तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से सामाजिक कल्याण और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। इस रिपोर्ट में समिति की सिफारिशों और निष्कर्षों पर सभी विभागों से समयबद्ध और विस्तृत क्रिया मांगी गई है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, सेवा वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की समीक्षा करेगी। इसके अलावा रिपोर्ट में विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों की स्थिति, हर सिफारिश पर हुई प्रगति और उन्हें पूरा करने की तय समय सीमा का उल्लेख करना भी अनिवार्य किया गया है। आदित्य के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। उपराज्यपाल ने कहा कि यह समारोह केवल एक शैक्षणिक यात्रा का समापन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में हजारों नई यात्राओं का शुभारम्भ है।
द ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 2026 में स्नातक होने वाली इस पीढ़ी के लिए ये दौर काफी खास है। आप जिस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं वो तेजी से बदल रही है, खासकर नई प्रौद्योगिकी से, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण अनुकूल नए आविष्कार। ऐसे दौर में शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बदली परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता, सही तरीके से सोचने समझने की ताकत और कुछ नया करने का हौसला देने वाली होना चाहिए। टू इनोवेट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि छात्रों के वर्षों के कठिन परिश्रम, अटूट समर्पण और कड़े अनुशासन का प्रतिफल है।
ये वो लोग हैं जो ना केवल अपने कैरियर को आगे लेकर के जाएंगे, बल्कि इस देश के लिए नए विजन पे काम करते हुए पूरे राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। 26,000 स्टूडेंट्स जब अलग अलग सेगमेंट में काम करते हुए इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम सब मिलकर के जरूर अपने शहर की भी चिंता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा AI, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और डिजाइन नवाचार जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले 500 छात्रों को 1000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की और दिल्ली नगर निगम के ऐप का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि नगर निगम के विद्यालयों में देश का भविष्य तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में निगम के शिक्षा विभाग में कई नई योजनाओं का आरंभ किया गया और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निगम के शिक्षा विभाग ने आज 1514 निगम विद्यालयों के लिए एक ऐप जारी किया है। इसकी सहायता से अभिभावक घर बैठे अपने बच्चों के गृह कार्य, कक्षा कार्य और उपस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने आज ख्याला में विष्णु गार्डन में लगभग 4.5 करोड़ की लागत से जुड़े 9 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं में पीने के पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन और नई सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है।
इसमें पीने के पानी की लाइन भी है, सीवेज है और नई सड़कें हैं ख्याला के अंदर। इस साल 32,000 करोड़ रुपए से दिल्ली को सवारने का काम शुरू है। ये निरंतर मुहिम चलती रहेगी और दिल्ली के अंदर हर विधानसभा को इसी तरह खूबसूरत बनाना होगा। नई सड़कें, नए पार्क, हरियाली लानी होगी। विकसित भारत तभी होगा जब दिल्ली विकसित हो।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने देश और विदेशों में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की रोलिंग स्टॉक निर्माण क्षमता और मेट्रो प्रणाली के क्रियान्वयन और संचालन में विशेषज्ञता को मिलाकर परियोजनाओं की पहचान करना, उनके लिए बोली लगाना और उन्हें पूरा करना है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि साझेदारी के जरिए दोनों संगठनों का लक्ष्य अपनी तकनीकी और व्यावसायिक ताकतों को मिलाकर मजबूत समाधान प्रस्तुत करना है। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन माध्यम से लगभग 74 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुके थे। पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाले बिना मांगे निवेश के प्रस्तावों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1930 पर साझा करें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करोल बाग और आनंद पर्वत इलाके में 1600 से अधिक नकली मोबाइल फोन की गैरकानूनी असेंबलिंग और बिक्री में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही कार्रवाई में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने कंपनियों द्वारा बैन किए गए और कबाड़ में फेंके गए मोबाइल फोन को कई राज्यों के कबाड़ डीलरों से सुनियोजित तरीके से खरीदते थे और फिर उन्हें इस्तेमाल लायक बनाते थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज कोएड सर्वोदय स्कूल, महरम नगर और यूनियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोल मार्केट में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 550 छात्रों और यात्रियों को विभिन्न ट्रैफिक नियमों, पैदल चलने वालों की सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के महत्व, ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया गया। दिल्ली सरकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 136वीं जयंती के अवसर पर भीम ज्योति उत्सव का आयोजन करेगी। 5 दिन का यह उत्सव कल से शुरू होगा। इसका आयोजन कस्तूरबा गांधी मार्ग इंडिया गेट लॉन्स में किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी और ज्योति उत्सव का आयोजन होगा। वहीं शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
दिल्ली सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने कहा कि यह उत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प बनेगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत आगंतुकों को बाबा साहेब के जीवन, विचारों और संघर्ष से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही अनेक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तुतियां और विविध आयोजन भी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत पुष्पांजलि, जन भागीदारी आधारित गतिविधियां, संविधान मेला प्रदर्शनी, जागरूक अभियान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वॉकाथॉन और कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। संविधान मेला इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, दिव्यांग जन योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से दी जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि इस आयोजन में एक विशेष गैलरी स्थापित की जाएगी, जिसमें 299 प्रमुख व्यक्तियों की सूची, उनके योगदान से संबंधित साहित्य और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि वार्षिक भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के कारण कल और शनिवार को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। मंगोलपुर, कलागांव और कराला गांव में कल जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं मुबारकपुर गांव में शनिवार तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया गया है।
हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए।
नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित विमला ने महिला आरक्षण विधेयक को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हुआ है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लीबिया लोबो सरदेसाई ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर साबित होगा। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज दोपहर नई दिल्ली में पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। श्रीमती अन्नपूर्णा ने कहा कि पोषण पखवाड़ा का मकसद पोषण को जन आंदोलन बनाना है।
महिला बाल विकास मंत्रालय का जो मैंडेट है बहुत ही वृहद है और लगभग हर गांव तक हम पहुंचे, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं भी दो मत नहीं कि हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र की दीदियां हैं हर मौसम में वो हर घर तक पहुंचती हैं और भारत सरकार के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा भी अलग अलग अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनके माध्यम से बेहतर करने का प्रयास उनके द्वारा भी किया जाता है।
औषधि विभाग के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश टीएल ने कहा कि देश में आवश्यक औषधि सामग्रियों के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में श्री सत्य प्रकाश ने कहा कि संकट के कारण औषधीय सामग्रियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू यूज के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित उत्तराखंड एडवेंचर राइड के तीसरे संस्करण को राजधानी से रवाना किया। कल से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत मोटरसाइकिल समुदाय द्वारा सड़क सुरक्षा के महत्व को दिखाते हुए एक यात्रा निकाली जाएगी जो राजधानी से चलकर उत्तराखंड के भीमताल तक संचालित की जाएगी। दूरदर्शन ने नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि साझेदारी का उद्देश्य ICCR द्वारा उपलब्ध कराई गई सांस्कृतिक सामग्री की व्यापक पहुंच बढ़ाने के लिए दूरदर्शन प्रसार भारती के व्यापक टेलीविजन रेडियो और डिजिटल नेटवर्क का लाभ उठाना है। राजधानी में आज हल्के बादल के साथ दिन भर धूप खिली रही। आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का मौसम साफ रहने की संभावना है। आकाशवाणी के पीपल्स पदम ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी से बातचीत प्रसारित होगी। सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यह बातचीत कल सुबह 9:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा सचिवालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यवाही के लिए सभी विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नगर निगम के 500 छात्रों को ₹1,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने देश और विदेशों में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए समझौता किया। पुलिस ने ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दिल्ली सरकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल से भीम ज्योति उत्सव का आयोजन करेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।